ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल लगभग 67% मतदान हुआ। राज्य विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में हुआ मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। 100 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों ने मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। पहली बार इस चुनाव में दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा दी गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देशभर में एक साथ चुनाव कराने से देश को बहुत लाभ होगा। कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव से बेहतर प्रशासन, नीतिगत स्थिरता, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक विकास के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि यह सिफारिश अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए बुनियादी सुधार साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को भाषा के इतिहास में एक स्वर्णिम मील का पत्थर बताया। कल मुंबई में अभिजात मराठी भाषा कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के लोगों को बधाई दी और इस ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा होने पर गर्व व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने इन भाषाओं से जुड़े लोगों को बधाई दी। इस बीच भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चामू कृष्ण शास्त्री ने आकाशवाणी को बताया कि सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से युवाओं को इन भाषाओं के साहित्य को समझना आसान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बहुपक्षीय विकास बैंकों की मजबूती के लिए G20 विशेषज्ञ समूह की 30 में से 27 सिफारिशों पर विचार करने के लिए विश्व बैंक की सराहना की है। कल प्रोफेसर निक स्टर्न के साथ नई दिल्ली में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराया जाना और ठोस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जलवायु परिवर्तन पर ठोस कार्यवाही के लिए जरूरी है। प्रोफेसर स्टर्न बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान गठित विशेषज्ञ समूह के सदस्य हैं। प्रोफेसर स्टर्न ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अत्यंत पिछड़े देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने में भारत की भूमिका की सराहना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉ मुइज़ो की यह पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। डॉ मुइज़ो आज विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वो सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। श्री मुइज़ो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वे बेंगलुरु और मुंबई में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की 3 दिन की जर्मनी यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे हैम्बर्ग में 2 दिन के सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। श्री जोशी जर्मनी और ब्रिटेन के मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, कम लागत पर धन उपलब्ध कराने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टरों ने कल शाम घोषणा की थी कि वे चिकित्सा सेवाएं जारी रखते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार के समक्ष रखी गई 10 सूत्री मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के बाद डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू की है। वायुसेना आज चेन्नई में मरीना बीच पर सुबह 11 बजे एक बड़ा एयर शो करेगी। ये आयोजन 92वें वार्षिक वायुसेना दिवस समारोह के शुभारंभ के तौर पर किया जा रहा है। इस शो में लड़ाकू विमान तेजस, मिराज, सुखोई 30, एमकेआई, जगुआर, पोसिडोन विमान और नवीनतम प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित जेट 72 विमान शामिल होंगे। महिला 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दोपहर 3:30 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 2020 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज ग्वालियर में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।